नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अपने परिचालन में जेनरेटिव प्रौद्योगिकी लागू करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। LTTS लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के तहत डिजिटल इंजीनियरिंग और R&D सेवा कंपनी है। कंपनी ने बयान में कहा कि LTTS डेवलपर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सभी उद्योगों में API सक्षम समाधान पेश करता है। कंपनी ने कहा कि वो ये प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ अपनी विशेषज्ञता का संयोजन करेगी। टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन ने मंगलवार को कहा कि भारत का इस्पात का शुद्ध आयातक होना चिंता का विषय है। नरेंद्रन ने राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय इस्पात संघ के सम्मेलन में कहा, सरकार ने भरोसा दिलाया है कि अगर आयात बढ़ता रहा तो वह हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि चीन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात की कीमतें अभी भी थोड़ी नर्म है। आपने मंत्री पीयूष गोयल को ये कहते हुए सुना है कि अगर आयात बढ़ता है तो सरकार इस पर विचार करेगी कि वो मदद के लिए क्या कर सकती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को घरेलू उद्योग को भरोसा दिलाया कि भारत यूरोपीय संघ के कार्बन कर को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये अनुचित है। रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनी ज्योति लैब्स का चालू वित्त वर्ष की 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 59.1% बढ़कर 103.98 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आमदनी बढ़ने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। कंपनी के पास उजाला, मैक्सो, एक्सो, हैंको, प्रिल और मार्गो जैसे ब्रांड हैं। कंपनी ने इससे पहले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 65.35 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। तिमाही के दौरान कंपनी की एकीकृत परिचालन आय बढ़कर 732.34 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 659.2 करोड़ रुपए थी। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 610.45 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले समान अवधि में 495.26 करोड़ रुपए था। चीन का आयात अक्टूबर में बढ़ा है, लेकिन निर्यात में लगातार छठे माह गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का संकट अभी कायम है। सीमा शुल्क विभाग के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन का आयात अक्टूबर में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 3% बढ़कर 218.3 अरब डॉलर पर पहुँच गया। वहीं निर्यात 6.4% घटकर 274.8 अरब डॉलर रह गया। इस दौरान चीन का व्यापार अधिशेष घटकर 56.5 अरब डॉलर पर आ गया। ये सितंबर के 77.7 अरब डॉलर के आंकड़े से 30% कम है। इसके अलावा ये व्यापार अधिशेष का 17 माह का निचला स्तर है। सितंबर में चीन का निर्यात सालाना आधार पर 6.2% घटा था। कैपिटल इकोनॉमिस्ट के जूलियन इवांस प्रिट चार्ट ने कहा कि आगामी महीनों में निर्यात में और गिरावट आ सकती है। कुल मिलाकर इस साल चीन का विदेश व्यापार काफी सुस्त रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में आए उछाल से रेटिंग बेहतर हुई है। इससे आगे भी देश के आर्थिक हालात अच्छे रहने की उम्मीद बढ़ गई है। फिच रेटिंग्स ने देश के आर्थिक व्यवस्था में सुधार का संकेत दिया है। मध्यम अवधि के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को 0.7% बढ़ाकर 6.2% कर दिया गया है। इसके ठीक उलट चीन की रेटिंग्स कम हो गई हैं, इसके ग्रोथ अनुमान में कमी आई है। भारत के बारे में फिच रेटिंग्स ने रोजगार दर में सुधार और कार्य आयु जनसंख्या पूर्वानुमान में मामूली वृद्धि को देखते हुए मध्यम अवधि के विकास दर को बेहतर बनाया है और इस दर को 0.7% अंक बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। फिच के अनुसार भागीदारी दर में अपेक्षित नकारात्मक वृद्धि को देखते हुए भारत की अनुमानित श्रम आपूर्ति वृद्धि भी 2019 की तुलना में कम है। मुक्का प्रोटीन्स को IPO के जरिए धन जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। IPO दस्तावेजों के अनुसार मछली का भोजन, मछली का तेल और मछली का घुलनशील पेस्ट बनाने वाली कंपनी IPO के तहत 8 करोड़ तक नए शेयर जारी करेगी। कंपनी ने इस साल जून में IPO के लिए नए सिरे से दस्तावेज जमा कराए थे। उसके IPO के लिए सेबी का निष्कर्ष 30 अक्टूबर को मिला है। सेबी की भाषा में किसी भी कंपनी को IPO लाने के लिए नियामक का निष्कर्ष जरूरी होता है। जॉयडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने मंगलवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 53.2% बढ़कर 800.7 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 522.5 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसका परिचालन राजस्व 4,368.8 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 4,005.5 करोड़ रुपये था। जॉयडस लाइफ साइंसेज के प्रबंध निदेशक शर्विल पटेल ने कहा, वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही का परिणाम हमारे प्रमुख व्यवसायों में स्थिर वृद्धि के साथ ही मजबूत मुनाफे को दर्शाता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।